पृष्ठ संख्या 76। रंगीन ने इस कविता को रेखते के नाम से संबोधित किया है। हिंसा की चर्चा करते हुए भी इनकी ओर संकेत किया जा चुका है। निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि रेखती का आरंभ हिंसा के हाथ से ही हुआ या रंगीन के। हिंसा ने अपना और रंगीन का नाम एक साथ लिखा है। कुछ लोगों का विचार है कि दक्षिण में प्रसिद्ध कवि हाशमी बीजापुरी ने पहले पहल रेखती लिखी। रेखती केवल स्त्रियों की भाषा में कुछ लिखने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हीं के जीवन से संबंध रखने वाले हालात इस प्रकार बयान किए जाते हैं कि पारिवारिक जीवन में जो वेदना, घुटन और प्रतिबंध है, उनका चित्र आंखों के सामने खिंच जाए। उसमें उनके यौन संबंधी जीवन का वर्णन करने में कभी-कभी अश्लीलता भी स्पष्ट होने लगती है, जो रेखती की एक विशेषता भी है। रेखती को उर्दू साहित्यकारों ने कुछ अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उसमें उच्च नैतिक सिद्धांतों के बदले घृणा से भरे हुए जीवन को सामने लाने की चेष्टा की जाती है। एक मिटते हुए सामंती समाज में स्त्री का कोई स्थान नहीं होता, उसका सुख और दुख नहीं समझा जाता, उसके जीवन का एक एक क्षण पुरुषों के इशारे पर निर्भर होता है। लेकिन गहरी दृष्टि से देखा जाए तो इस अवस्था में स्त्रियों के सीने में बड़े बड़े तूफान उठते होंगे, उनकी भी कुछ भावनाएं होंगी जिनकी ओर पुरुषों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए अगर रंगीन और इंशा ने अवध के उस विलास युक्त समाज में स्त्री की ओर भी देखा और उसका वर्णन किया, तो इसे ऐतिहासिक महत्व अवश्य ही देना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि एक कवि अपने सामने कोई ऊंचा आदर्श नहीं रखते थे, न उनका कोई बड़ा उद्देश्य था। वे महिला समाज के उद्धार के लिए भी प्रयत्नशील नहीं थे, परंतु अवचेतन रूप से उनके जीवन का चित्रण करने में सफल हुए और उससे एक बड़ी कमी पूरी हुई। यह भी ठीक है कि अश्लीलता के कारण उनका साहित्य महत्व कम हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि दुराचार और वासना का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इसको क्या किया जाए कि उस समय के जीवन में यह भ्रष्टाचार मौजूद था। अगर उसकी ओर किसी ने नहीं देखा था, तो इससे यह न समझना चाहिए कि स्त्री जीवन की समस्याएं प्रस्तुत किए जाने योग्य नहीं थी। रंगीन इस जीवन से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी। उदाहरण के लिए कुछ शेर दिए जाते हैं। चलो चलकर कुतुब साहब में झूले डाल कर झूला, दुगाना मेह बरसता है, महीना है ये सावन का। कोई पीस कर खूब सी लाल मिर्चें तेरे दोनों दीदों में भर जाए आतूं। पृष्ठ संख्या 77। नन्हे से कलेजे को क्या इसके हुआ लोगो, कुछ इन दिनों रहती है दिलगीर मेरी छू छू। जो तेरे पास से आता है मैं पूछूं हूँ यही, क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहाँ रहता है। इस युग के एक प्रसिद्ध कवि मुसफ़ी भी हैं। उनका नाम शेख गुलाम हमदानी था। अमरोहे के रहने वाले थे और युवा अवस्था ही में दिल्ली चले आए थे। दिल्ली में उस समय शेर शायरी की धूम थी। मुसफ़ी भी मुशायरों में जाते और दिल्ली के साहित्यिक जीवन में भाग लेते थे। नौकरी की खोज में इधर उधर फिरे और अंत में लखनऊ चले आए। लखनऊ में मिर्जा सुलेमा शिकोह के दरबार में नौकर हो गए। यही इंशा से उनकी साहित्यिक प्रतिद्वंद्वता भी रहती थी। यह बताना तो असंभव है कि झगड़ा आरंभ किधर से हुआ, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि राज दरबार में अपने स्थान को सुरक्षित रखने और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कवियों को भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करनी पड़ती थी। ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कभी-कभी वह बड़ा गंदा और अश्लील रूप धारण कर लेते थे। एक दूसरे की निंदा करने में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता था, और चूंकि ये लोग लखनऊ के प्रमुख कवि थे, इसलिए यहाँ के अन्य लोग भी उसमें सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करते थे। उर्दू साहित्य की अनेक पुस्तकों में यह कहानी बड़े रोचक शब्दों में कही गई है, जिसमें सच झूठ इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। हम अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि कविता को इस नीचे स्तर पर खींच लाना उचित न था, परंतु सामाजिक जीवन में आमोद प्रमोद और विलास को इस प्रकार अधिकार प्राप्त हो गया था कि उसमें यह अनुचित बातें भी उचित हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इंशा और मुसफ़ी और ऐसे ही दूसरे कवि हमारे हृदय में सम्मान की वही भावनाएं जागृत नहीं करते जो मीर सौदा दर्द और अन्य दूसरे कवियों के लिए पैदा होती थी। सारा दोष उस समय के राज दरबार पर डाला जा सकता है, परंतु ये बड़े कवि थे और इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें गंभीरता और धैर्य से काम लेना चाहिए था। मुसफ़ी की मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई और उन्होंने बहुत से शिष्य छोड़े जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। मुसफ़ी के 8 काव्य संग्रह मिलते हैं, वह सब के सब अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इनमें अधिकतर गजलें हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त कसीदे, मशनवी इत्यादि भी मिलते हैं। मुसफ़ी ने फारसी में 3 और किताबें लिखी हैं, जिनमें फारसी तथा उर्दू के कवियों के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं पर आलोचना की गई है। उर्दू साहित्य के इतिहास में इसको बड़ा महत्व प्राप्त है, क्योंकि उनसे केवल बहुत से कवियों के बारे में ही हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वरन उस समय के पृष्ठ संख्या 78 जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। उनके नाम हैं अग्दे सुरैया, तज़किर ए हिंदी और रियाजुल फुसहा। इसमें मुसफ़ी ने अपने हालात भी लिखे हैं, जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने फारसी में भी कई संग्रह एकत्र किए थे, परंतु उनका अधिकांश संग्रह नष्ट हो गया। मुसफ़ी उर्दू के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उनकी गज़लों में भावुकता, सादगी और कलात्मक निपुणता पाई जाती है। उनकी एक त्रुटि जिसकी ओर संकेत करना आवश्यक है, यह थी कि वह बहुधा बड़े बड़े फारसी और उर्दू कवियों की शैलियों को अपनाने की चेष्टा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं उनका कोई रंग अपनी विशेषताओं के साथ सामने नहीं आता। उनकी कविताओं में मीर, सौदा, जुर्रत और इंशा सभी के रंग मिलते हैं, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनको उर्दू के महान कवियों की पंक्ति में जगह मिलती रहेगी। उनके कुछ शेर उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं। सोते ही हम रह गए, अफसोस आए, काफिला यारों का सफर कर गया। किस्सा कहूँ क्या दिले बीमार का, इश्क की तब थी न बचा मर गया। तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। मैं ऐतमाद करूँ किसकी आशनाई पर, कोई किसी का जमाने में आशना भी है। क्या जानते थे हम कि खफा होगी बागवां, गुलशन में ले गई थी नसीमे सहर हमें। जो सैर करनी है कर ले, कि जब खिजा आई न गुल रहेगा चमन में न खार ठहरेगा। यही है लूट तो दस्ते जुनू के हाथों से, ना एक मेरे गरीबा में तार ठहरेगा। यहाँ तक जिन कवियों का उल्लेख हुआ उनकी आयु का बड़ा भाग कहीं और बीता, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये लोग लखनऊ के हो रहे। उर्दू साहित्य के इतिहासकार इन कवियों को दिल्ली और लखनऊ दोनों में गिनते हैं। इन लोगों की रचनाएं दिल्ली के रंग से थोड़ा बहुत हटी हुई हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता पृष्ठ संख्या 79 कि ये कवि लखनऊ केंद्र के कवि थे। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन्होंने काव्य रचना को जिस डगर पर डाल दिया था वह एक नई दिशा का पता देता है। जिन कवियों का वर्णन हुआ है उनके अतिरिक्त बहुत से और कवियों के नाम मिलते हैं जो दिल्ली से लखनऊ आए। लखनऊ में पहले से कोई बना बनाया रंग मौजूद नहीं था। इन कवियों ने नई सामाजिक स्थिति तथा एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिससे लखनऊ केंद्र में कुछ नवीन विशेषताएं उत्पन्न हो गईं। इन्हीं को कभी कभी लखनऊ स्कूल कहा जाता है। इस विषय पर बहुत वाद विवाद हो चुका है कि दिल्ली और लखनऊ की काव्य रचना में क्या विशेष अंतर है। बहुत से लिखने वाले बहुत सोच विचार किए बिना दोनों को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न सिद्ध करते हैं। वह यह नहीं सोचते कि सामंती पतन का जो युग दिल्ली में था वही साधारण अंतर के साथ लखनऊ में भी था। जीवन के जो मूल्य सिद्धांत एक जगह माने जाते थे वही दूसरी जगह भी माने जाते थे। साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र की जो परंपराएं एक जगह आदर की दृष्टि से देखी जाती थी वही बात दूसरे स्थान पर भी थी। जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति वर्गों का जो आधार दिल्ली में था लगभग वही लखनऊ में भी था। इसलिए कविता के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन होना असंभव था। काव्य जीवन का प्रतिबिंब होता है और अगर जीवन के मूल आधारों में परिवर्तन नहीं हुआ तो साहित्य में भी नहीं हो सकता। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैली और विचार दृष्टि से जो नवीनता लखनऊ में उत्पन्न हुई वह कुछ ऐसे कारणों से हुई जो इतने महत्वपूर्ण और गहरे नहीं थे कि वह साहित्य की धारा को बिल्कुल ही मोड़ देते। साधारण रूप में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का मुगल राज शताब्दियों की उन्नति और प्रतिभा के बाद क्षय रोगग्रस्त प्राणी की तरह धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर जा रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि अब कोई शक्ति नहीं है जो उसे एक विनाश से बचा सकेगी। इसलिए वहाँ के कवियों की भावना नैराश्यपूर्ण थी और हृदय की गहराई से उत्पन्न होती थी। लखनऊ में यह बात नहीं थी, यहाँ नया नया राज्य स्थापित हुआ था जो बाह्य रूप से उन्नति की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली के मुकाबले में यहाँ शांति भी अधिक थी और लोग एक प्रकार से अच्छी आर्थिक दशा में थे। उस समय के कवि और अन्य कलाकार इतिहास की गति से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि जो घुन दिल्ली को खा रहा है वही लखनऊ को भी खा रहा है। इसलिए वे इस चढ़ते हुए सूर्य के प्रकाश में खो गए और सुंदरता के बाह्य रूप के पुजारी बनकर अपनी कविता को उन्होंने वह सुंदरता नहीं दी जो हार्दिक भावों के प्रकट करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि कवियों को जो संरक्षण और सम्मान दिल्ली में नहीं मिल रहा था वह अब लखनऊ में प्राप्त था। इसलिए यह बात स्वाभाविक थी कि वह यहाँ के जीवन में घुल मिल जाएं और पृष्ठ संख्या 80 समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखें। इसमें संदेह नहीं कि यह दृष्टि एक प्रकार की बनावट रखती थी और गंभीर से गंभीर विषय को केवल ऊपर से ही देखती थी। इसका प्रभाव भी उस समय के साहित्य पर देखा जा सकता है। एक तीसरी बात जिसकी ओर संकेत करना आवश्यक है यह है कि लखनऊ के नवाब और बादशाह मुसलमानों के उस समुदाय से संबंध रखते थे जिन्हें शिया कहा जाता है। उनकी विचार दृष्टि और कुछ रीति रिवाज दूसरे मुसलमानों से अलग थे। वह मुसलमानों के नबी, उनकी सुपुत्री, उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली और दो नाती इमाम हसन और इमाम हुसैन से असाधारण प्रेम रखने के कारण उनके जन्म और मृत्यु से संबंधित दिवस बड़े उत्साह, जोश और धूमधाम से मनाते हैं। विशेषकर इमाम हुसैन की शोकप्रद शहादत की याद में प्रत्येक वर्ष के कई महीने शोक और विलाप में व्यतीत करते हैं। अपने अलौकिक जीवन को भी किसी न किसी प्रकार से उन्हीं महान पुरुषों के जीवन से संबंधित करके अपने दुख और सुख के हर अवसर पर उन्हें याद करते हैं और उससे नैतिक बल प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। साहित्य के कई रूप इसी धार्मिकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुए थे, जैसे मरसिया, नौहा, सलाम इत्यादि। ये सारी बातें साहित्य को एक नवीन मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त हैं। एक बात जिसने इस नवीनता को प्रकट करने में सबसे अधिक भाग दिया वह भाषा की भिन्नता थी। इस प्रश्न को भी लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि लखनऊ की बोलचाल की हिंदुस्तानी पर अवधी की नम्रता और मीठेपन का प्रभाव भी पड़ा था। जिस प्रकार यहाँ की सभ्यता में एक प्रकार के सूक्ष्म सुंदरता पाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ की बोलचाल में भी कोमलता का आभास होता है। कुछ शब्दों की ध्वनि, कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कुछ मुहावरे एक दूसरे से विभिन्न हैं और साहित्य का कोई आलोचक जो गहरी दृष्टि से दिल्ली और लखनऊ की कविता को देखना चाहता है, इनसे आंखें नहीं मूंद सकता। इस प्रकार लखनऊ और दिल्ली की कविता में कई रंग में झलकियाँ मिलती हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो त्रुटियाँ लखनऊ में थी वह दिल्ली में नहीं पाई जाती थी, या जो विशेषताएं दिल्ली में मिलती हैं उनसे लखनऊ का समस्त साहित्य वंचित था। हम केवल यह कह सकते हैं कि कुछ भावनाएं और उन भावनाओं के प्रकट करने का ढंग एक जगह कम और भिन्न है, दूसरी जगह अधिक। संभवतः यह बात सच है कि विचारधारा के अधिक अंतर न होते हुए भी शैलियों का अंतर कभी-कभी एक मौलिक भेद का रूप धारण कर लेता है, जिसे एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वता ने और रूढ़ बना दिया। विस्तार में न जाते हुए भी इस विश्लेषण से उस साहित्यिक वाद विवाद का थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकेगा जिसे दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल का झगड़ा कहा जाता है। जिन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है उनके लिए पृष्ठ संख्या 81 एक वातावरण पहले ही बन चुका था। थोड़ा थोड़ा समय और बीत जाने पर वह बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ गया और सहस्त्रों कवियों ने अपने अपने ढंग से उसे विकसित करने का यत्न किया। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में लखनऊ के कोने कोने में मुशायरे होते थे और कविता की भावनाएं हर श्रेणी के लोगों में इस प्रकार बस गई थी कि अनपढ़ लोग तक काव्य की रचना कर लेते थे और कविता की सुंदरता से आनंद प्राप्त कर सकते थे। इस संक्षिप्त इतिहास में केवल प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों ही का परिचय दिया जा सकता है। जब लखनऊ केंद्र की कविता का उल्लेख किया जाता है तो सबसे पहले नासिक और आतिश के नाम हमारे सामने आते हैं। वास्तव में लखनऊ केंद्र को जो व्यक्तित्व और महत्ता प्राप्त है वह इन्हीं दो कवियों और विशेषकर नासिक का प्रदान किया हुआ है। उन्हें एक प्रकार से साहित्यिक अधिनायक कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य जगत में उनकी अधीनता केवल लखनऊ ही के लोग स्वीकार नहीं करते बल्कि दिल्ली के बड़े बड़े साहित्यकार भी उनका लोहा मानते हैं। नासिक का नाम इमाम बख्श था। उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। इस बात में आलोचकों में बड़ा मतभेद है कि वे किस वंश से संबंध रखते थे। इसकी ओर संकेत करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उनके विरोधी कवियों ने इसी की आड़ में उनकी निंदा करने के अवसर ढूंढे हैं। नासिक ने थोड़े ही समय में इतना नाम पैदा कर लिया कि लखनऊ के बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा अमीर उनके शिष्य बन गए। नासिक ने कभी राजदरबार से अपना नाता नहीं जोड़ा, परंतु उनके चारों ओर राजदरबार का ही वातावरण था, इसलिए वह इस बात पर मजबूर होते थे कि दरबार के नियमों का पालन करें। जब वे अपने आत्माभिमान के कारण ऐसा ना कर सके तो उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा। उन्होंने कुछ समय इलाहाबाद में भी बिताया जहां वे दाराए शाह अजमल में रहते थे और अपनी कविता में अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है, जैसे हिर फिर के दाराए ही में रखता हूँ मैं कदम, आई कहाँ से गर्दिशें पर कार पाँव में, तीन त्रिवेणी ओ दो आँखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है। इसी तरह उन्हें लखनऊ छोड़कर फैजाबाद, बनारस और कानपुर में भी रहना पड़ा, परंतु उन्होंने कभी बादशाह की सराहना में कोई कविता नहीं लिखी। नासिक जैसे कविता में अपने रंग में एक थे, उसी प्रकार उनका जीवन भी कुछ विचित्र था। कहा जाता है कि वह बहुत मोटे ताजे और भद्दे शरीर के थे, व्यायाम का बहुत शौक था, रंग काला था और पारिवारिक जीवन के झमेलों से मुक्त रहने की इच्छा से उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। खाना दिन रात में केवल एक ही बार खाते थे।